और आइए अरपा रेडियो पर अब सुनते हैं कार्यक्रम भेंट मुलाकात योगेश के साथ।
श्रोताओं जय जोहार, आप सुन रहे हैं अरपा रेडियो 90.8 FM। मैं हूं योगेश और आपके साथ कार्यक्रम भेंट मुलाकात को लेकर हाजिर हूं। आप जानते ही हैं कि भेंट मुलाकात के इस सीरीज में हम अंग्रेजी विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं SCERT रायपुर यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर छत्तीसगढ़ की सहायक प्राध्यापक सुश्री आई संध्या रानी, जिनसे हम बहुत सारे सवाल कर रहे हैं और वे सारे सवाल हमारे श्रोताओं में जो शिक्षक हैं उनके द्वारा आए हैं। वो शिक्षक अपनी अंग्रेजी पढ़ाने की प्रैक्टिसेस में बहुत सारी समस्याएं पाते हैं और उन समस्याओं का समाधान वे संध्या जी से चाहते हैं। ये प्रोग्राम हमने इसीलिए डिजाइन किया है कि हम अंग्रेजी विषय में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयों को किसी एक्सपर्ट के माध्यम से दूर करें। संध्या जी, आपका पुनः एक बार स्वागत है और आपकी अनुमति से मैं इस कार्यक्रम का प्रश्न लेता हूँ।
हेलो,
नमस्कार, अरपा रेडियो में आपका स्वागत है। मैं योगेश बोल रहा हूँ, कृपया अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न रखें।
जी सर, नमस्ते सर, मैं श्रीमती उषा पुरी बोल रही हूँ और मेरा मैडम से सवाल है कि जब हम बच्चों को अपने प्राथमिक कक्षा में जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि चेंजेस के सेंटेंस रहते हैं, उसको हम बच्चों को सही तरीके से समझा नहीं पाते या हमारे पास वो टेक्निक नहीं रहती है कि हम उसको समझा पाए और बच्चे उसको बहुत अच्छे से आसानी से समझ जाए और वो कैच कर सके। तो मैं मैडम से यही निवेदन करूंगी कि इसके बारे में कुछ बताएं जिससे हम बच्चों को अच्छे तरीके से बताएं ताकि अच्छे से और आसानी से समझ सके।
जी, आपका सवाल मैं हमारी आज की एक्सपर्ट संध्या मैडम की ओर प्रेषित करता हूं। थैंक यू सो मच उषा जी।
अंग्रेजी के वाक्यों को पूरी तरह समझना, अगर हम लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं। अब बहुत छोटे बच्चे को भाषा सीखते हुए अगर ध्यान से देखते हैं तो बच्चों के पास दो टाइप की वोकैबुलरी होती है, कंटेंट और स्ट्रक्चरल वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स जो होते हैं वो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये कुछ कंटेंट वर्ड्स हैं जो अपने आप मीनिंग लेके चलते हैं। दूसरे जो होते हैं वो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं, फंक्शनल वर्ड्स भी इन्हें कहते हैं हम, जो कि प्रोनाउंस है, प्रेपोजिशंस है, आर्टिकल्स है, कंजंक्शंस है, मॉडल्स है, ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ये सारे जो है वो स्ट्रक्चरल वर्ड्स कहलाती है। जो कंटेंट वर्ड्स है वो बच्चे को सेंटेंस यानी हम जो बोलना चाहते हैं वो समझने में मदद करती हैं, और ग्रामेटिकल वर्ड्स या फंक्शनल वर्ड्स या स्ट्रक्चरल वर्ड्स है वो सेंटेंस फॉर्मेशन में हमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो अगर कंटेंट वर्ड्स का मीनिंग बच्चे को समझ में आता है तो 85% या 75% ऑफ द लैंग्वेज वो समझ जाता है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की बात अगर हम स्ट्रक्चरल वर्ड्स की बात हम करते हैं तो उसकी यूज तब होती है जब ग्रामेटिकल करेक्टनेस की बात करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर एक सेंटेंस है, अगर मान लेते हो दिस इज एन एप्पल, तो अगर ये सेंटेंस है तो एप्पल को दिखा के या मैं बोलूंगी दिस इज एन एप्पल तो नॉर्मली बच्चा समझ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। और दूसरा, अगर मैं एप्पल भी हाथ में पकड़ के बताती हूँ एप्पल, तो भी बच्चा समझ जाएगा कि ये एप्पल की बात करती है। दोनों में अंतर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ये एप्पल है यही बोलना चाह रही हूँ मैं, एप्पल पकड़ के बताती हूँ तू। तो इसका मतलब ये है कि कंटेंट वर्ड जो एप्पल है अगर इतना भी बच्चा समझ जाता है तो दिस इज एन एप्पल का के मतलब समझने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रामेटिकल करेक्टनेस की अगर हम बात करते हैं, दिस एप्पल और दिस इज एन एप्पल में बहुत ज्यादा फर्क ग्रामर की ही होती है, समझ में ज्यादा फर्क नहीं होता है। समझ में ज्यादा फर्क तब आता है दिस इज एन एप्पल और इज दिस एन एप्पल। दिस इज एन एप्पल जो है वो एक सेंटेंस है और इज दिस एन एप्पल जो है एक क्वेश्चन है। तो दोनों में अगर फर्क पहचानना है तो बच्चे को हमें इंटोनेशन के साथ भी देना जरूरी है। दिस इज एन एप्पल अगर देखेंगे आप तो फॉलोइंग इंटोनेशन के साथ जाता है कि ये एप्पल है, क्या ये एप्पल है, ये राइजिंग टोन में जाता है इज दिस एन एप्पल, एप्पल जब ऊपर राइजिंग में जाएगा तो बच्चा समझ जाएगा एप्पल, तो वो उसके पास दो ही ऑप्शंस होंगे, यस या नो,
यस,
तो वो टोन से वो समझ जाएगा। तो दो चीजें हैं सेंटेंस की बात अगर हम करते हैं तो हमें एक तो थोड़ा बहुत इंटोनेशन पे ध्यान देना होगा, स्ट्रेस पे ध्यान देना होगा, और दूसरा जो है कि कंटेंट वर्ड्स पे ध्यान देना होगा। अगर हम स्ट्रेस और इंटोनेशन की बात करते हैं तो स्ट्रेस जितना जो है सारे कंटेंट वर्ड्स अपने आप में स्ट्रेस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेंटेंस अगर मैं लेती हूँ, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो इसको मैं फ्लुएंटली बोलती हूँ तो राम इज गोइंग टू मार्केट, राम गोइंग मार्केट, तीन वर्ड्स ही आपको ध्यान से सुनाई देंगे, राम गो मार्केट, ये तीन वर्ड्स ही अपने आप में इस सेंटेंस को समझा देती हैं कि राम गो जाना जा रहा और मार्केट, तो ये तीन कंटेंट वर्ड से ही इसकी मीनिंग समझ में आती है। इज और टू का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है बट ये ग्रामेटिकल करेक्टनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप समझ की बात करते हैं तो कंटेंट वर्ड्स और स्ट्रेसिंग कंटेंट वर्ड्स और इंटोनेशन, ये तीन चीज अगर आप ध्यान से देख करेंगे तो बच्चे सेंटेंस को आसानी से समझ लेंगे।
यही थी, ये तो बहुत अच्छी तकनीक है और बहुत बेसिक तकनीक है अंग्रेजी भाषा के वाक्यों को समझने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोरी मैडम इस जवाब से संतुष्ट हुई होंगी। इसके साथ ही मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि आप सभी श्रोता जो हमें सुन रहे हैं, आपके प्रश्नों के एक बार में जो मैडम ने जवाब दिए हैं उसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न आता है, फील फ्री टू आस्क अस अगेन, मैडम आपके प्रश्नों के फिर जवाब देने को हाजिर है, क्योंकि उनका लक्ष्य ही है कि हमारे पूरे राज्य में जितने अधिक से अधिक बच्चों को हम अंग्रेजी की शिक्षा बहुत बेहतर तरीके से दे सकें। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल के जवाब में और इस एपिसोड में अपना समय देने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये प्रश्न पूछ रही हैं वंदना रोहिला मैडम।
हेलो
हेलो जी, नमस्कार, अरपा रेडियो में आपका स्वागत है। मैं योगेश बोल रहा हूँ, आप कृपया अपना नाम बताएं एवं अपना प्रश्न रखें।
जी नमस्कार, मैं वंदना बोल रही हूँ, मेरा मैडम से ये सवाल है। प्राइमरी मिडिल स्कूल के बच्चे जब स्टूडेंट जो है नाइन्थ क्लास में आते हैं तो ज्यादातर बच्चे अल्फाबेट और अपना नाम लिखने में भी असमर्थ होते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि किस प्रकार नाइन्थ का सिलेबस के साथ बच्चों को बेसिक स्किल एक ही सेशन में सिखा पाए।
अच्छा, तो मतलब वंदना जी आप ये कहना चाह रही हैं कि नाइन्थ में जो बच्चा आपके विद्यालय आता है या अधिकतर जो बच्चे हमारे विद्यालय आते हैं वो अंग्रेजी की बेसिक स्किल्स के जानकार नहीं होते, तो हम एक ही सेशन में कैसे पुरानी स्किल्स को भी कवर कर लें और नाइन्थ की चीजों को भी उनको समझा पाएं। मेरे ख्याल से आप यही कहना चाहती हैं।
जी,
तो मैं आपका सवाल मैडम की ओर प्रेषित करता हूँ।
जी धन्यवाद।
ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर ट्रेनिंग में पूछा ही जाता है। भारत के सभी राज्यों में जब भी राजकीय शालाओं के शिक्षक बैठते होंगे आपस में गप मारने के लिए भी बैठते होंगे तो ये सवाल आता ही होगा एक बार उनके बीच। तो आपने सवाल पता ही है आपको, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जवाब देकर हमें संतुष्ट कर पाएंगे।
कोशिश करती हूँ। 8 इयर्स तक बच्चों को लैंग्वेज सीखते हैं, नाइन्थ में जब बच्चे आते हैं
बेसिक स्किल का अभाव देखा जाता है उनके।
देखा जाता है। नॉर्मली ये सारे गवर्नमेंट स्कूल्स की यही कंडीशन है हमारे पास कि बच्चे नाइन्थ में आते हैं तो बेसिक लैंग्वेज स्किल्स नहीं जानते हैं। बेसिक लैंग्वेज स्किल्स की बात ही नहीं है, अल्फाबेट में भी प्रॉब्लम होता है बच्चों को पहचानने में, समझने में, वर्ड लिखने में, सेंटेंस में जाने में, यानी वो कंटिन्यूटी जो क्लास वन से एट तक वो सीखते हैं वहां पे भी वो नियरली जस्ट स्टार्टिंग स्टेट पे रहते हैं।
जी।
अगर हम ये चाहेंगे कि एक क्लास में नाइन्थ क्लास में आते हैं बच्चे तो 8 इयर्स की लैंग्वेज उनको दे दे तो ये इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है हमारे लिए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। बट ये पॉसिबल नहीं है करके हम इसे छोड़ भी नहीं सकते, हमें तो इसको एड्रेस करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जवाबदारी है टीचर्स कि हमें इसको इस प्रॉब्लम के साथ हमें इन बच्चों को एड्रेस करते हुए इनको आगे ले जाना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक स्ट्रेटजी हम प्लान करें, एक अच्छी तगड़ी प्लानिंग करें तो शायद हम इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते। मैं ये नहीं कह सकती कि 8 इयर्स का जो टाइम है वो एक साल में दे देंगे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम एक स्ट्रैटेजी की बात करें, एक प्लानिंग के साथ चले, तो शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। एक प्लस पॉइंट हमारे पास ये होता है, क्योंकि जब बच्चा नाइन्थ क्लास में आता है उसके पास वो मेंटल एज उसका नाइन्थ क्लास का बच्चे का होता है, यानी वो अपने सराउंडिंग्स को जानता है, पहचानता है बहुत सारी चीजें, वो नाइन्थ क्लास के बच्चों की मेंटल एज का बात करता है। दूसरा जो दूसरा लैंग्वेज उसका है हिंदी, उसमें भी वो बहुत इंग्लिश के कंपैरिजन में अच्छा होता है, क्योंकि ये हिंदी भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। अगर उस लैंग्वेज स्किल्स को वो इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट करके आगे चलने की कोशिश करेगा तो शायद हम उसमें सफल होंगे। दूसरी बात ये मैं कहना चाह रही थी कि मैंने जैसे कहा कि इनका मेंटल एज जो है नाइन्थ क्लास का है, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करें, क्योंकि क्लास वन में अगर बच्चा ए टू जेड तक का अल्फाबेट सीखना, उसका उसको आइडेंटिफाई करना, उसको साउंड के साथ एसोसिएट करना और वो मिलके तीन लेटर्स के वर्ड्स लिखना, ये चीजें करता है। क्लास टू में जाता है तो वो फिर थोड़ी और वोकैबुलरी समझता है, एक आध सेंटेंस लिखने की कोशिश करता है। क्लास फाइव तक तीन चार सेंटेंसेस का एक छोटा सा पैराग्राफ लिखता है। सिक्स सेवेंथ एट में, एट तक आता है तो 300 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना और उतना बड़ा लेसन को समझना चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है उस बच्चे के साथ जो हमारा सिलेबस कहता है। बट अगर हम ये स्ट्रैटेजिकली चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वन मंथ का एक कॉम्पैक्ट प्रोग्राम हम डिजाइन करें, क्योंकि हमारे बच्चे की मेंटल एज नाइन्थ क्लास के बच्चे की है, वो एक साल नहीं लेगा अल्फाबेट सीखने में, कैपिटल और स्मॉल सीखने में, क्योंकि उसके पास प्रीवियस नॉलेज है। आप जब भी इस बच्चे के पास आएंगे, उसके पास वो जीरो पे नहीं है, उसके पास प्रीवियस नॉलेज है, उसे पता है एक लेटर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, बहुत सारी चीजें हमने उसे सिखा रखी है। बट सिखा रखी है किस, केवल उसको एग्जाम में पास होने के लिए हमने सिखाया है। ये चीज हम बार बार अपने आप को ध्यान दें कि आठवीं से नवीं में बच्चा आता है तो वो कमजोर इसलिए पड़ता है क्योंकि हमने उसको एग्जाम की तैयारी के लायक सिखाया है और हमने उसको कभी भी नहीं कहा कि रीडिंग कितना जरूरी है। हमने ये बताया कि अनसीन पैसेज वर्ड टू वर्ड लेटर टू लेटर मैच करें और सेंटेंस लिख दिया, आंसर सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एज टीचर्स हमने भी उन्हें कहीं गलत दिशाएं दी है जिसे हमें अब रोकना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश में बोले, जो उनकी जरूरत है और आज के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की भी जरूरत है। तो हम एक कॉम्पैक्ट प्रोग्राम दे, नाइन्थ क्लास में जब बच्चे आते हैं तो अल्फाबेट पे उसको बहुत टाइम नहीं लगेगा, दो तीन दिन के प्रैक्टिस में वो पूरे अल्फाबेट सीख लेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है, वो एट्थ में कुछ ना कुछ तो करके ही आया होगा। उसके बाद 3 डेज का एक वर्ड बिल्डिंग का थोड़ा बहुत हम प्रोनंसिएशन के साथ देते हैं और 8 डेज में अगर हम एक कॉम्पैक्ट प्रोग्राम उस बच्चे को देते हैं जिसमें कि अगर हम 40 मिनट्स या 60 मिनट्स का सेशंस भी देते हैं और थोड़ा सा होमवर्क करके उसके पास उसको थोड़ा सा पुशअप करेंगे तो ये बच्चा क्लास 5 के लेवल पे पहुंच जाएगा। अगर हम 5 to 10 डेज का एक कॉम्पैक्ट प्रोग्राम करते हैं तो 5वीं तक का चला जाएगा, का मतलब मुझे ये लगता है 10 डेज में वो 4 सेंटेंसेस अपने बारे में, अपने फ्रेंड के बारे में, अपने आसपास के बारे में लिखने के काबिलियत ला लेगा। उसके बाद हम दो तीन दिन में एक पैरेलल राइटिंग में और स्पीकिंग की बात करते हैं कि मैं अपने बारे में 5 सेंटेंस बोलती हूँ, तुम अपने बारे में 5 सेंटेंस बोलो, ये स्टार्टिंग पे लाते हैं और धीरे धीरे वो 5 से 10, 10 से 20 सेंटेंसेस पे ले जाए। मैं ये नहीं कहती आज मैंने 10 बोला तो कल वो 10 से 20 में चला जाए, कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आज वो 10 सेंटेंस बोला तो हो सकता है कल वो 5 ही सेंटेंस बोले। तो जब भी हम ये करते हैं वोकैबुलरी की भी हमें उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब वहां पहुंचेगा। तो पैरेलल राइटिंग, गाइडेड राइटिंग और फ्री राइटिंग, ये तीनों के लिए हमें एटलीस्ट 25 डेज का समय दे। और जब हम राइटिंग करते हैं तो साथ साथ स्पीकिंग भी करें, तब ये बच्चे आगे चल के इस लेवल पे आएंगे। दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल के नाइन्थ क्लास के बच्चों के जो इंटरेस्ट है उस पे हम ध्यान दे के ये पूरी अपने प्लानिंग वो करें, क्योंकि ये बच्चे एडोलेसेंस बच्चे हैं, इनको मूवीज का शौक होता है और थ्रिल्स का शौक होता है, तो हमारे टॉपिक्स ऐसे हो, ये हम शाहरुख खान के बारे में बात करें या कुछ ऐसे फिल्म एक्टर्स या क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स या आसपास के ऐसे चीजों पे हम, या फिल्म्स पे ही बात करें जो उनको पसंद है, उन चीजों को अपना माध्यम बनाते हुए इसको आगे बढ़ाएं। तो शायद मैं ये नहीं कहती कि पूरे 8 ईयर्स का जो लेवल है वो 9th में हम 1 महीने में कंप्लीट करेंगे, बट टू सम एक्सटेंट हम बच्चों को उस लेवल पे लाएंगे, क्योंकि 9th क्लास का समय हमारे पास पूरे डेज का है। अभी कोविड के कारण शायद उतना समय हमें नहीं मिलेगा, बट ये पूरा समय हमारे पास है जो प्रोग्राम लर्निंग के थ्रू हम धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। वोकैबुलरी बच्चों के पास नहीं है तो आप वर्ड वेब पे जा सकते हैं, एक वर्ड दीजिए बच्चों को, बोलिए इससे रिलेटेड जितने वर्ड्स आप कर सकते हैं वो करिए, इस टाइप के आप होमवर्क देंगे तो शायद बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ेगी। डिक्शनरीज कंसल्ट करना सिखाइए, डिक्शनरीज यूज करना सिखाइए बच्चों को, तो धीरे धीरे बच्चे करेंगे। आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत बड़ी बातें हो रही हैं, बट देन ये चीजें इस बच्चे की जरूरत है, तो उनको डिक्शनरीज में, ग्रुप्स में हम इतने डिक्शनरीज अगर अवेलेबल नहीं कर सकते तो ग्रुप्स में डिक्शनरीज अवेलेबल करवाइए। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि बच्चों के पास मोबाइल फोन्स हैं, तो मोबाइल्स में डिक्शनरीज यूज करिए, प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग देखने का उसको उनको सिखाइए। ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो शायद हमारे बच्चे नियरली कुछ दिनों में गैप थोड़ी बहुत फिल करने की हम कोशिश कर सकते हैं।
जी, फोन की बात से मुझे एक बात सूझी कि अब अगर स्मार्टफोन्स घर में कम से कम एक भी है अगर बच्चे के, तो उसके पास एक और साधन मौजूद है जहाँ वो अंग्रेजी सुन सकता है, जहाँ अंग्रेजी के शब्द सुन सकता है।
साथ में अगर ये छोटे छोटे मूवीज हैं, ये चीजें भी अगर क्लासरूम्स में इंग्लिश का दिखाते हैं तो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा, बट वो कितना स्कूल्स कितने परमिट कर पाएंगे ये बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए मैं बहुत ऊंचे इस पे नहीं बोल रही हूँ, बट देन अगर टीचर्स ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा।
बिल्कुल, और डिजिटलाइजेशन के इस दौर में बहुत सारे विद्यालयों में ये संसाधन है भी।
हाँ।
मतलब अभी बहुत कम ही विद्यालय ऐसे होंगे जहाँ पर कंप्यूटर्स नहीं होंगे या कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो उनके लिए अलग से सपोर्टिंग काम कर सके। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे बीच बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो
कर रहे हैं,
कुछ भी ना होने के बाद सिर्फ अपने स्मार्टफोन का ही बहुत बेहतर यूज कर रहे हैं,
और इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्टून है, स्किट्स है, स्टोरीज है जो नेट पे अवेलेबल है। अगर ये भी चीज हम बच्चों को एक्सपोजर के तौर पे देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। टीचर्स जो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, ये बच्चों के साथ ये चीजें अगर यूज करते हैं तो खुद भी इम्प्रूव करेंगे और बच्चों को भी इम्प्रूव करने का मौका देंगे।
बस आपकी बात के साथ एक बात जोड़ता हूँ कि जिस समस्या के बारे में वंदना जी बात कर रही हैं वो समस्या अलग तरह की और बड़ी है, इसलिए उसको एड्रेस भी अलग तरीके से और अलग प्लानिंग के साथ ही करना पड़ेगा, ताकि तभी हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूरा हो सके और वो जो बच्चे हमारे विद्यालय में है वो तो उनका उनको समान अवसर मिलना ही चाहिए कि वो भी अंग्रेजी सीख सके। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल के जवाब में और इस एपिसोड में अपना समय देने के लिए।
संध्या जी को खूब सारा धन्यवाद देते हुए आज की बात यहाँ रोकते हैं इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। ट्यून करते रहिए अरपा रेडियो 90.8 FM। बाय बाय।
भेंट मुलाकात योगेश के साथ। आज राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT की वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक सुश्री आई संध्या रानी के साथ योगेश ने की बातचीत। ये बातचीत फोन इन कार्यक्रम पर आधारित थी। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अंग्रेजी का पठन पाठन कैसे हो, इस विषय पर प्रश्नों के उत्तर दे रही हैं सुश्री आई संध्या रानी। इस श्रृंखला का अगला अंक सुनने के लिए सुनते रहिए अरपा रेडियो।
ये है अरपा रेडियो।